अब जिंदगी में जब कोई वसीयत करता है, मिसाल के तौर पर मेरे घर में अपने बेटों को, बेटियों को, सबको बिठाया और वसीयत की कि भाई मैं ये वसीयत कर रहा हूँ, उस वक्त तो ऐसा लगता है कि क्योंकि बाप मौजूद है तो उनकी दिलजोई के लिए या उनके रौब की वजह से हम कुछ भी कह लें, राजी हो जाते हैं। जैसे ही इंतकाल होता है उसके बाद फिर आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, भाई हमने तो सिर्फ वाली साहब की वजह से किया था, हम तो राजी नहीं है इस वसीयत पर, अब क्या होगा।
देखिए, पहली बात तो ये है कि असल रजामंदी होती है मरने के बाद।
अच्छा
जिंदगी में वारिस राजी हो या ना हो, इसका तो एतबार ही नहीं है। अगर जो जिंदगी में राजी हो, बाद में रुजू कर सकते हैं।
ठीक है
यानी वो यहाँ वो उस वसीयत की बात हो रही है जिसमें वरासा की इजाजत जरूरी है, जो वरासा की इजाजत पर मौकूफ है।
सही
मसलन अपने किसी वारिस के लिए उसने वसीयत की है, वो
ठीक
तो वरासा की इजाजत पर मौकूफ है। वरासा जायज रखेंगे तो जायज होगा, वरना नहीं। इसी तरह अपने तिहाई माल से ज्यादा की वसीयत की है, वो भी वरासा की इजाजत पर मौकूफ है, वरासा जायज रखेंगे तो जायज होगा।
ठीक है
अब इन वसीयतों पर जिंदगी में तो राजी थे, तो
सही है
बाद में इनको हक हासिल है कि रुजू कर सकते हैं। तो असल जो रिजामंदी है वो बाद की है।
ठीक है
हाँ, मरने के बाद वो राजी हो गए, वसीयत के निफाज पर राजी हो गए, तो इस सूरत में अब रुजू नहीं कर सकते।
ठीक है
लेकिन जिंदगी में राजी हो गए थे, मरने के बाद राजी नहीं है, और वसीयत ऐसी है जिसमें वरसा की रजामंदी जरूरी है,
ठीक है
तो फिर उनको यह हक हासिल है कि राजी हो या ना हो।
सही
अलबत्त तिहाई माल के अंदर की जो वसीयत की है गैर वारिस के लिए, उसमें चाहे वरसा राजी हो या ना हो, उस पर तो अमल बहर सूरत
करना पड़ेगा।
होगा।